ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 15वां अध्याय श्लोक नंबर 13। एकदा भागवतो वैकुंठस्यामलात्मनः यायो वैकुंठं निलयं सर्वं शोकमस्कृतम्। एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः यायुर्वैकुंठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः यायुर्वैकुंठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः यायुर्वैकुंठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। माताजीस
एकदा हरि बोल। ते वे एकदा एक बार भगवतः भगवान के वैकुंठस्य भगवान विष्णु का अमल आत्मनः समस्त भौतिक कल्मस से मुक्त हुए ययुः प्रविष्ट हुए वैकुंठ निलयम वैकुंठ नामक धाम सर्वलोक समस्त भौतिक लोकों के निवासियों के द्वारा नमस्कृतम पूजित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, और भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की, भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थाई धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के निवासी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतः वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं।
ओम ज्ञानं मिलांदस्य ज्ञानंजना शलक्या श्री चैतन्य मनोवेशम स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदंतिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सजागतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजेवं सद्वैतं समधूतं हरिजनसहितं कृष्णं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी ने बृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूति देवी प्रणमामि हरि वंच जय श्री कृष्ण चेतन हरे कृष्ण हरे कृष्ण था एकदा भगवतो वैकुंठस्यमलत्मनः यायुर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोक नमस्कृतम्। तो इस श्लोक में आपको भगवान के दिव्य धाम के विषय में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस अध्याय में भगवान के धाम के गुणों का लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, और पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे सनाक सनातन सनानंद और सनत कुमार, जिसे आप कुमारस के नाम से जानते हो। इन्हें कुमारस क्यों कहा जाता है? दिखने में वो क्या है, जैसे 5 साल के बालक हैं, पर असल में वो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र थे, तो शिव जी से भी ज्यादा बड़े हैं उम्र में, पर दिखते हैं कैसे, 5 साल के बालक के समान, इसलिए उन्हें कुमारस कहा जाता है। और कोई इन्होंने अपने आप को इस रूप में क्यों रखा? ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र थे, तो एक रूप से आप कह सकते हैं उम्र में बूढ़ा होना चाहिए, पर उन्होंने अपने आप को अपनी योगिक सिद्धियों के द्वारा वो अपने शरीर को, क्या बिजली चले गई, योगिक सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर को बड़े होने से रोका, और इसलिए उन्हें कुमारस कहा जाता है। तुम्हारा अर्थ है कोई बालक जो कि 5 साल का आयु की आयु का हो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारा अक्षरत प्रज्ञ, हमें अध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है श्लोक में जो कुमारज है ये पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और विश्व का भ्रमण करने के पश्चात वो कहां पहुंचे, भगवान के दिव्य लोक में, दिव्य स्थान में पहुंचे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने विदेश की यात्रा नहीं की, आपने अमेरिका की यात्रा या किसी विदेश के देश की यात्रा नहीं की, पर आप उस देश के विषय में किताबों के द्वारा, वीडियो के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि क्या लक्षण है, लोगों के क्या क्या रंग है, क्या गुण है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वारा आपको भगवान के दिव्य लोकों के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में यहां ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जिस स्थान में भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम क्या है, वैकुंठ। और ये जो भौतिक जगत है इसका नाम क्या है, कुंठ। तो वैकुंठ और कुंठ में अंतर क्या है, प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में। वैकुंठ का अर्थ है संक्षेप में जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का शोक नहीं। और कुंठ जगत का क्या अर्थ, जहां कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश, शोक ही शोक। तो ब्रह्म लोक तक भी आप पहुंच जाओ, वहां भी आप अपने आप को 7 प्रकार के कष्टों से नहीं बचा सकते। इसलिए गीता में कहा गया है, ओ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन रोजना मम अपितु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाओ, वहां भी तुम अपने आप को इस 7 प्रकार के कष्टों से नहीं बचा सकते। तो यहां कहा जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो कुमारज थे ये भगवान के दिव्य धाम, वैकुंठ जगत का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, और वहां अनेक वैकुंठ प्लैनेट्स हैं या लोक हैं। तो जो कुमारज हैं इस श्लोक में जो वर्णन किया जा रहा है, कुमारज के विषय में वर्णन किया जा रहा है, जो कुमारज है ये कहां पहुंचे, भगवान के दिव्य धाम। तो भगवान के दिव्य धाम पहुंचने के लिए किस प्रकार की योग्यता या गुण की आवश्यकता है। जैसे कि मान लो आपने अमेरिका जाना हो, तो अगर आपने अमेरिका पहुंचना है तो एक तो आपको वीजा की आवश्यकता है, वीजा के अलावा आपको धन चाहिए टिकट खरीदने के लिए। धन है और वीजा नहीं है तो भी आप प्रवेश नहीं कर सकते, वीजा है और धन नहीं है तो भी आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए इस श्लोक के अनुसार क्या उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश दिया जा रहा है कि जो कुमारज हैं भगवान के धाम में प्रवेश कर पाए क्योंकि किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण उनमें नहीं था। उनके मन में केवल एक ही भाव था, वो ये था निरंतर सदा परम भगवान की सेवा में जुड़े रहना। भगवान के धाम प्रवेश करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को भौतिक आकर्षण से मुक्त करें और जो भौतिक प्रकृति का प्रभाव है उसे अपने आप को दूर करें। जब तक आपके हृदय में थोड़ा भी भौतिक आकर्षण रहेगा आप भगवान के धाम प्रवेश नहीं कर सकोगे। भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए ये आवश्यक है कि 100% आपके हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं हो। तो आप कहोगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, 100% हमें भौतिक आकर्षण को त्यागना है, 100% हमें भौतिक विचारों को त्यागना है। दिखता है कठिन, पर अगर आप प्रयास करोगे, ये जो भक्ति योग का जो सिद्धांत है, ये जो वैदिक भक्ति की शिक्षा है, अगर हम इसके आधार पर चलेंगे तो बिना शंका के आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो, किससे? इस भौतिक आकर्षण से। और इसलिए हमारे महान संतों ने हमें वैदिक भक्ति का मार्ग दिया है, जिसमें हम अनेक नियमों का पालन करते हैं, किस लिए? अशुद्ध मन इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए। तो यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो कुमारज है, ये भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भौतिक आकर्षण से मुक्त कर दिया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत भगवान के दिव्य धाम है, वहां अनेक लोक है, अनेक आध्यात्मिक लोक है। हम भौतिक विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं ये स्थापित करने के लिए, ये खोजने के लिए कि कितने प्लैनेट्स हैं, कितने यूनिवर्सल हैं, कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि ये जो इस पृथ्वी, ये जो लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, ये भगवान की सृष्टि का एक छोटा सा अंग है। जैसे कि अगर आप एक बोरी में गेहूं खरीदते हो, तो अगर आप गेहूं का एक दाने को बाहर निकालो तो ये क्या कुछ आपको महसूस भी नहीं होगा, एक दाने को बाहर निकालो। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में अनेक लोक हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं, पर ये सारे के सारे जो हैं क्लेश के स्थान हैं। कई बार हम सोचते हैं स्वर्ग में सुख मिलेगा, स्वर्ग में पहुंचकर भौतिक जगत से अधिक सुख प्राप्त हो सकता है, पर वहां भी आप अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। जब हिरण्यकश्यपु ने ये विनती की थी ब्रह्मा जी से कि मुझे ये वर दो कि मुझे कभी मृत्यु के समय झुकना नहीं पड़े, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये वर मैं कैसे दूं, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। वो 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्षों के पश्चात ब्रह्मा जी को भी अपना जीवन त्यागना पड़ता है। तो पर वैकुंठ धाम में, जैसे कि इस अध्याय में बताया जा रहा है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं। इस अध्याय में बड़े सुंदर रूप से वैकुंठ धाम के अनेक लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। अगर आप इनसे सुनोगे तो बुद्धिमान व्यक्ति की ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं। जैसे आप देखते हो सारी दुनिया में लोग अमेरिका व यूरोप पहुंचना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, देखा है फिल्मों में वगैरह, वहां लोग बड़े ऐश का जीवन बिता रहे हैं। तो इस भागवतम के इस अध्याय में भगवान के वैकुंठ धाम के अनेक गुणों का वर्णन है। उदाहरण के लिए वैकुंठ धाम के जो पुरुष है, वो इस पृथ्वी के पुरुषों से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है, लाखों गुना। और जो स्त्रियां हैं वहां, वो भी इस पृथ्वी, इस भौतिक जगत की औरतों से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है। तो भौतिक संसार में आप देखते हो, अगर पुरुष खूबसूरत हो, स्त्री खूबसूरत हो, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। पर वैकुंठ धाम में हालांकि पुरुष यहां से ज्यादा खूबसूरत हैं, स्त्रियां यहां से खूबसूरत हैं, पर दोनों का आकर्षण कहां है? भगवान के प्रति। दोनों का आकर्षण है भगवान के प्रति। दोनों दिन रात क्या करते हैं? परम भगवान का गुणगान। पति पत्नी दोनों भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं। उनके मन में किसी प्रकार के भौतिक सुख लाभ का भाव नहीं। भौतिक संसार में आप जब रहते हो, तीन गुणों का प्रभाव रहता है, रजगुण, सतगुण, तमगुण। पर वैकुंठ धाम में इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं। और वैकुंठ धाम में जो पेड़ है, वृक्ष है, ये जो पेड़ है डिजायर ट्री है, कल्प वृक्ष है। भौतिक संसार में आप एक प्रकार के पेड़ से एक ही प्रकार का फल प्राप्त कर सकते हो। आम का पेड़ है तो आम ही मिलेगा, सेब का पेड़ है तो सेब ही मिलेगा। पर जो वैकुंठ धाम है, वहां के जो वृक्ष है, वो आपकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। और वैकुंठ धाम में भक्तों की इच्छा क्या है? सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहे। और भौतिक संसार में कितने लोगों के पास प्राइवेट हवाई जहाज है? केवल गिने चुने, है ना? आप ऐसे हैं किसका प्राइवेट है? अमेरिका में काफी लोगों के पास प्राइवेट हवाई जहाज है, पर वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति के पास हवाई जहाज है। हर व्यक्ति, पार्किंग प्रॉब्लम नहीं है वहां, हर व्यक्ति के पास हवाई जहाज है। और हर व्यक्ति का हवाई जहाज सोने और हीरे मोतियों के साथ बना है। बहुत एक संसार में हम सोने और हीरे मोतियों की नकल करते हैं, जैसे आप गोल्ड रंग, इमिटेशन गोल्ड, है ना? पर वैकुंठ धाम में हर हवाई जहाज जो है हीरे मोतियों सोने के साथ बना है, असली सोने के साथ, 24 कैरेट और भौतिक संसार में आपका अभ्यास है, चाहे कितना भी अच्छा पायलट हो, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है ना? पिछले हफ्ते एक क्रैश हुआ था स्पेन में। पर वैकुंठ धाम में कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं। और सारे जो वहां के निवासी हैं, अपने हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्या करते हुए? भगवान का गुणगान करते हुए। तो इस वैकुंठ धाम में क्या हर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? कर सकता है। हर व्यक्ति को यह मौका दिया जा रहा है शास्त्र के द्वारा कि आप भगवान के धाम में आओ। परम भगवान गीता भागवतम के द्वारा क्या कर रहे हैं? हमें निमंत्रण दे रहे हैं। किस विषय का? हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मेरे दिव्य धाम में। भौतिक संसार में सबका अनुभव है कि चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो, जैसे कि एक रूप से आप कह सकते हो धन हो, तो आपको धन के साथ अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। पर क्या इन सुविधाओं के कारण आप अपने आप को सात प्रकार के कष्टों से बचा सकते हो? इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इन कष्टों का वर्णन कर रहे हैं। क्या? जन्म, आगे क्या? मृत्यु। मृत्यु से कोई बच सकता है? चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो, बुढ़ापेपन से कोई बच सकता है? आप बुढ़ापेपन को छुपाने का प्रयास कर सकते हो, बालों को रंग कर लो, मेकअप कर लो वगैरह, पर कब तक अब आप बुढ़ापेपन को छुपा सकते हो? फिर रोग पीड़ा से कोई अपने आप को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। और आगे आदिदेविक, आदिबौद्धिक और आध्यात्मिक क्लेश, मन द्वारा क्लेश, मन अनेक रूपों से आपको कष्ट देता है। इसके अलावा प्रकृति द्वारा कष्ट, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो सारे विश्व में प्रकृति द्वारा कष्ट बढ़ते जा रहा है तेजी के साथ। और कुछ समय पहले, ये एक हफ्ते पहले, यूनाइटेड नेशंस के वैज्ञानियों ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी दिन पे दिन ज्यादा गर्म होते जा रही है, इसका एक और परिणाम ये होगा कि साइक्लोन और हेल स्टॉर्म, ये जो तूफान आता है, ये और जल्दी जल्दी आएगा। ये जो दुर्घटनाएं हैं, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, जैसे बिहार में इस वक्त बाढ़ का प्रभाव आप देख रहे हो, और मतलब कि प्रकृति द्वारा जो हम कष्ट भुगत रहे हैं वो और भी तेजी के साथ बढ़ते जाएगा। तो कुंत जगत में चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, जैसे कि एक धनी व्यक्ति है भारत में जिसका खानदान छोटा है, चार पांच सदस्य, पर वो 27 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है रहने के लिए अपने लिए, 27 मंजिल की बिल्डिंग, विश्व में सबसे महंगा मकान 27 मंजिल की बिल्डिंग में कोई 400 कमरे होंगे और घर में कितने सदस्य हैं? सिर्फ 5। तो चाहे आप 27 मंजिल की बिल्डिंग भी बना लो रहने के लिए, चाहे आप महल भी बना लो रहने के लिए, क्या आप अपने आप को ये 7 प्रकार के कष्टों से बचा सकोगे? नहीं बचा सकोगे। तो इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, भौतिक जगत के 2 लक्षण क्या है, दुखालायाम अशाश्वत। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है, वहां भगवान और उनके भक्त निवास करते हैं। वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, केवल परम भगवान और उनके भक्त वहां प्रवेश कर सकते हैं। और जो भौतिक व्यक्ति हैं, जो भौतिक संसार की प्रजा जो है, वो भगवान की उपासना करती है। तो परम भगवान आपको क्या निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मेरे दिव्य धाम में, जहां की किसी प्रकार का कष्ट नहीं, बुढ़ापापन नहीं, कोई शोक नहीं। पर हमारा क्या दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य यह है कि इन सब सुविधाओं की प्राप्त करने की संभावना है, पर हम इतने मूर्ख हैं, हम क्या कहते हैं, हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें भौतिक संसार ही ज्यादा अच्छा मीठा दिख रहा है, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। और अगर हमें भगवान का धाम चाहिए भी, हम जो उसकी कीमत है वो भरने को तैयार नहीं है। भगवान ने गीता में क्या कहा, सर्वधर्मा परित्यज मामेकं शरणं व्रज, हम त्वं सर्वे पापे भयं मोक्षयामि वासुदेवा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा पर केवल अगर तुम मेरी शरण में आओ। तो वैकुंठ धाम में आप प्रवेश कर सकते हो, पर उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है भगवान के शरण में आओ, तन मन धन से भगवान के सेवा में जुड़ो। और अगर आप तन मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करोगे भगवान की सेवा में, तो इसका क्या परिणाम होगा कि आपका जो भौतिक आकर्षण है नष्ट हो जाएगा। देवेश गुणमाई मम माया दुर्तया, कई बार हम सोचते हैं इतने गुणी माया का विरोध करना बहुत कठिन है, कठिन है पर संभव नहीं, क्योंकि भगवान आगे क्या कहते हैं, अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो इस तरह गुणी माया का विरोध कर सकते हो। तो ये जो कुमाराज है, ये भगवान के दिव्य धाम में पहुंचे। इनकी इच्छा थी भगवान के दिव्य धाम में पहुंचे, इनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो और योगिक सिद्धियों के द्वारा उन्होंने अपने आप को इतना हल्का बना दिया था कि वो कहां भी पहुंच सके। 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां हैं, जिनमें से एक सिद्धि है उदाहरण के लिए प्रपत्ति सिद्धि। अगर प्रपत्ति सिद्धि हो आपके पास तो आप अपने हाथ को किधर भी फैलाकर कुछ भी उठा सकते हो। अच्छी सिद्धि है। आप घर बैठे बैठे अपने हाथ को बैंकों के खजाने में फैलाकर आपको एटीएम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर अनीमा लगीमा, तो इस प्रकार से 8 प्रकार की सिद्धियां, जिनमें एक है लाइटर देन द लाइटेस्ट, अपने आपको सबसे हल्का बना लेना। तो कुमारज ने इन सिद्धि द्वारा अपने आपको इतना हल्का बना दिया था कि वो भगवान के दिव्य धाम में भी प्रवेश कर पाए। पर दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए केवल योगिक सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, पवित्रता की आवश्यकता है। जब तक बिल्कुल शुद्ध पवित्र विचार नहीं होंगे आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब कुमारज पहुंचे भगवान के धाम में तो वहां उन्होंने उन्हें बड़ा अधिक आनंद अनुभव हुआ। उनकी उनकी इच्छा क्या थी कि उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई द्वारों से गुजर कर जाना पड़ता है। जैसे कि आपके दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, अगर आप कभी राष्ट्रपति को मिलना चाहो तो राष्ट्रपति को मिलने तक पहुंचने के लिए आपको कोई 20-25 कमरों से गुजर कर जाना पड़ता है, फिर अंत में जाकर आपको राष्ट्रपति का दर्शन मिलता है। तो भगवान के धाम में कुमारज ने प्रवेश तो किया, उनकी बड़ी इच्छा थी भगवान का दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त हो। और जो वो वहां पहुंचे, पहले 6 द्वारों से तो गुजर कर चले गए बड़े आसानी के साथ, द्वारपालों ने रोका नहीं। पर 7वें द्वारपाल में 7वें दरवाजे पर जय विजय खड़े थे, जिन्होंने देखा कि ये कुमारज, क्योंकि कुमारज ने अपने आप को इस प्रकार से क्यों रखा। पिता ने उन्हें आदेश दिया था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो संतान बढ़ाने के लिए। कुमारज ने कहा हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते, और इस कारण उन्होंने अपने आप को भौतिक आकर्षण से बचाने के लिए अपने आप को छोटे बच्चे बालक के रूप में रखा, क्योंकि छोटे बच्चों के हृदय में भौतिक भाव इतने नहीं होते जितने कि बड़ों के हृदय में होता है। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी वो संतान आबादी बढ़ाएं, पर इन्होंने ये इनकार कर दिया। आप भागवत में पढ़ते हो दक्षा की कथा, दक्षा के भी पुत्र थे। दक्षा मतलब कि जो आबादी पैदा करने में बड़ा एक्सपर्ट हो। तो दक्षा ने एक समय 10,000 पुत्रों, उनकी पत्नी 10,000 पुत्रों का जन्म दिया। आप कहोगे 10,000 पुत्र, भौतिक संसार में तो आपने सुना है एक साथ क्वाड्रुपल 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं या 5। वो दक्षा की पत्नी ने एक साथ 10,000 बच्चों पुत्रों को जन्म दिया। वो दक्षा की यही इच्छा थी कि आबादी बढ़ाने के लिए ये विवाह करें, पर दक्षा को ये पता था कि अगर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी करना है तो पहले उन्हें तपस्या और के का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और दक्षा ने उन्होंने भेजा एक पवित्र स्थान में, क्या था नाम, नारायण सरोवर, पवित्र स्थान में भेजा तपस्या का पालन करने के लिए। और वहां इन बेटों में इतना गहरा भाव था, नारद मुनि की संगत का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अभी हमने घर नहीं लौटना। उनको पता था घर लौटेंगे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, तो उन्होंने कह दिया कि हम घर नहीं लौटना चाहते, वहीं रहे। दक्षा क्रोधित हुए, समझ गए कि नारद मुनि का शायद प्रभाव है, क्रोधित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा इसका क्या लाभ, तो मोर संतान पैदा कर लो उसमें क्या। तो दक्षा ने फिर हजार और, उनकी पत्नी हजार और पुत्रों को जन्म दिया। और दक्षा की इच्छा यही थी कि वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, तो दक्षा ने उन्हें भी भेजा तपस्या का पालन करने के लिए। और जब गए वो, तो नारद मुनि जी वहां भी पहुंचे। नारद मुनि जी ने यही कहा कि ये जो भाई है अपने बड़े भाइयों के समान है, इनमें भी अनेक गुण है, जिसका ये परिणाम हुआ कि इन्होंने भी निर्णय कर लिया कि हमने घर नहीं लौटना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना। और जब दक्षा को ये पता लगा कि इन्होंने भी इनकार कर दिया है घर लौटने से, तो दक्षा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया। क्या था श्राप? ये श्राप दिया कि तुम भविष्य में किसी एक स्थान में नहीं रुक सकोगे 3 सेकंड से ज्यादा। और अगर आपको इस श्राप कोई दे कि आप जब 3 सेकंड एक स्थान में रुक सकोगे आप तो थक जाओगे, आपको ये श्राप भी दे 3 महीने एक स्थान में तो भी आप थक जाओगे। पर उन्होंने ये श्राप दिया कि आप जब 3 सेकंड एक स्थान में रुक सकोगे। और नारद मुनि ने क्या कहा, धन्यवाद। वो खुश हुए श्राप के साथ। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, तो उस कीर्तन में केवल जो उनके शुद्ध प्रिय साथी थे उन्हें अधिकार था अंदर प्रवेश करने के लिए। तो एक ब्राह्मण था जिसे रोक दिया था अंदर आने से, क्योंकि वो ब्राह्मण में भक्ति के गुण नहीं थे। तो अगले दिन जब महाप्रभु जी स्नान करने गए गंगा के तट पर, तो ब्राह्मण मिला चैतन्य महाप्रभु से। तो इस ब्राह्मण ने कहा, अपना ब्राह्मण का जनेऊ बाहर निकाल कर कहा, कल मैं आया था और मैंने प्रयास किया आपके कीर्तन मंडली में प्रवेश करने के लिए, पर आपके भक्त ने मुझे रोक दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप? कि तुम्हें भौतिक सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने सुना कि श्राप प्राप्त हो रहा है, कि भौतिक सुख प्राप्त कभी नहीं होगा, उन्होंने क्या कहा, बहुत धन्यवाद। तो आपको अगर कोई ये श्राप दे कि आपको भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो, आपको तो उसका आभार प्रकट करना चाहते। भौतिक संसार में लोग कहते हैं, स्वामी जी हमें आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद उनका अर्थ क्या है? आशीर्वाद ये दो कि हमें भौतिक सुख मिले, कि हमें भौतिक सुविधाएं मिले। अगर आप लोगों को ये कहो हम आशीर्वाद देने को तैयार हैं कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ, तो उसे घबरा जाएंगे। तो भगवान के दिव्य धाम में कोई मृत्यु का प्रभाव नहीं, कोई बड़ापापन नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं। पूरी प्रजा जो है सबके मन में एक ही भाव, कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। भौतिक संसार में हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। कई बार हम देखते हैं कोई भक्त भी अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, अरे उसने इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर ली। ईर्ष्या और द्वेष जब तक रहेगा आपको इस भौतिक संसार में कैदी रहना पड़ेगा। हम इस भौतिक संसार में कैदी हैं। आप कैदी कैसे हैं? हम तो स्वतंत्र हैं। आप कैदी हो क्योंकि सात प्रकार के क्लेशों के कारण आप सुख अनुभव नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, पुराने जमाने में अगर किसी मुजरिम को सजा देनी होती थी तो क्या करते थे? ले जाते थे, सिर को नीचे डुबो देते थे पानी के नीचे, और फिर यही देखने के लिए कि वो मरे नहीं, एक सेकंड के लिए ऊपर निकालते थे उसको सांस लेने के लिए, फिर वापस डुबकी पानी के नीचे। तो इसी प्रकार ये साउंड में क्या हो रहा है, इसी प्रकार भौतिक संसार में है क्लेश ही क्लेश, पर कभी कभी हमें थोड़ी सुख की झलक दिखती है। जैसे जो आदमी को सिर रखा हुआ है पानी के नीचे, एक सेकंड के लिए ऊपर उठाते हैं कि वो डूबे नहीं, तो सुख की झलक दिखती है। और हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भौतिक संसार में सुख ही सुख है, पर ध्यान से देखो क्लेश है, और ये क्लेश बढ़ते जा रहा है, घट रहा नहीं है। चाहे आपके विज्ञानी आपको ये विश्वास दिलाए कि वो आपकी इस रोग पीड़ा को दूर करेंगे, एक समस्या हल होती है तो अगली समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कुमार जो है, क्या हो रहा है, जो कुमार है ये भगवान के धाम प्रवेश कर गया, और जब भगवान के धाम में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने उन्हें सातवें दरवाजे पर रोक दिया। जब उन्हें रोका तो इन कुमारों को बड़ा क्रोध आया, आंखें लाल हो गई। क्यों? आप कहोगे क्रोध नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, तो कुमारों को क्रोध कैसे आया? उन्हें क्रोध आया क्योंकि ये रोका जा रहा था उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त करने से। जैसे कि आप देखते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी भी क्रोधित हो गए थे जबकि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि दिनानंद के माथे पर मदाई ने पत्थर फेंका है ना, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही पहुंचे वहां अपने सुदर्शन चक्र के साथ। तो आप क्रोधित हो सकते हो जब आपकी भक्ति में कोई रुकावट करे, कोई कहे आप मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं ले सकते, या कोई कहे आप किसी प्रकार से भक्ति से जुदा हो जाओ, जब आपको क्रोधित होना चाहे। तो कुमारज वो इतने प्रसन्न हुए थे, जैसे ही वैकुंठ धाम में उन्होंने प्रवेश किया सबके वो इतने प्रसन्न हुए इतने कि जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते। और जब उन्हें रोका गया, नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो एकदम क्रोधित हो गए। और क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि उन्हें रोका जा रहा था भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो हमें ईर्ष्या से बचना है, द्वेष से बचना है, क्रोध से बचना है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़कर भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखेंगे तो आपका आध्यात्मिक परिवर्तन रुक जाएगा। जब तक ईर्ष्या द्वेष रहेगा परम भगवान आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। तो हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना है। आप इस भौतिक संसार में हो क्यों? क्या कारण है भौतिक संसार में हम सब कैदी बन गए हैं? कृष्णा भाई मुख ना भोग वंचा करे निकाता सब माया तरे झपतिया धरे। कहा गया प्रेम विवाहता ग्रंथ में कि जैसे ही हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष भगवान के प्रति उत्पन्न होता है, आपको भगवान का धाम छोड़कर कहां आना पड़ता है? भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में आकर आप क्या अनुभव करते हो कि यहां क्लेश ही क्लेश है और ये मूर्ता है। अगर आप सोचो कि यहां आप किसी प्रकार की योजना से सुख प्राप्त कर सकते हो, प्रहलाद महाराज की शिक्षा आपको भागवतम के सातवें स्कंद में प्राप्त होती है। प्रधान महाराज कहते हैं सोचेतो विमुक्त चेतस इंद्रियास माया सुखा परम उद्भवतो विमूढ़ कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं और देखता हूं कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देखकर मुझे दुख होता है। तो उसी प्रकार अब भौतिक संसार में क्या देख रहे हो, सदा प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, और मूर्ख प्रजा भी सोचती है कि अगर हम कल इस पार्टी को चुनाव में चुन लें या हमें यह सुविधा प्राप्त हो जाए तो हमें सुख मिलेगा। तो ये है मूर्खपन। अब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दावा करे रेत स्थान में जल की प्राप्ति हो गई है तो केवल एक मूर्ख व्यक्ति उसे विश्वास करेगा। तो हमें ईर्ष्या से बचना है, द्वेष से बचना है, क्रोध से बचना है। ईर्ष्या द्वेष हमारे शत्रु हैं, और ईर्ष्या द्वेष से आप कैसे बच सकोगे? अगर हमारे हृदय में त्रिनादपि सुनिश्चेना का भाव अनुकूल हो। त्रिनादपि सुनिश्चेना का भाव क्या है? सदा दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद किए हुए। हमें इस भावना से आदर नहीं देते कि इसके बदले में हमें भी आदर मिलेगा। तो ये भाव अनुकूल करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमारा लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के अनुसार ये होना चाहिए। ये है हमारा लक्ष्य। और चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? त्रिनादपि सुनिश्चेना, अपने आप को घास से भी ज्यादा पतित, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तो हमें सहनशील होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कोई दुर्घटना बीती हमें एकदम क्रोधित हो जाए। हमें अपने आप को सहनशील बनाना है, आदर देना है बिना आदर की उम्मीद किए हुए, और अपने आप को क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे बचाना है। तो आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। जब तक हमें इन अनर्थ को वश में नहीं लाए, यह हरि नाम का असली भाव क्या है कि हम अपने हरि नाम के शुद्ध उच्चारण से हम अपने अनर्थ जो है इनको वश में ला सके। तो हमें क्रोधित केवल जब होना चाहिए जब हम देखें कि हमारी भक्ति में कोई अड़चन आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां कुमारराज क्रोधित हो गए द्वारपालों के तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोका, कहा भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान का दर्शन प्राप्त करने से, इसलिए वो क्रोधित हुए। तो अगर कोई कह रहा है आप हरि नाम नहीं कर सकते, फिर आप क्रोधित होइएगा। हाँ, तो जब वो क्रोधित हुए उन्होंने क्या कहा? तुम इस दिव्य धाम में रहने के योग्य नहीं हो, तुमने हमें कैसे रोका? और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। वैसे तो अगर कोई श्राप दे तो हम घबरा जाते हैं, पर जय विजय घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपने श्राप देना तो दीजिए, पर ये श्राप दीजिए कि हर जन्म में हम भगवान का स्मरण कर सकें। परीक्षित महाराज को भी श्राप दिया था। किसने? एक ब्राह्मण श्रृंगी ने। और अगर परीक्षित महाराज चाहते तो बड़ी सरलता के साथ उस श्राप का विरोध कर सकते थे। आखिर यही परीक्षित जब माता उत्तरा के घर में थे तो परम भगवान ने उनकी सुरक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के विरोध में। पर परीक्षित महाराज ने इस श्राप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, श्राप करे हो तो। पर केवल उन्होंने इसका क्या लाभ उठाया? किस लिए उन्होंने ये लाभ उठाया? संतों को निमंत्रण दिया, क्योंकि वो राजा थे, सम्राट थे पूरे पृथ्वी के। सारे संत उस समय के उपस्थित संत वहां पहुंचे और सबसे एक ही प्रश्न पूछा जिसका अंत आने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने भागवत को सुना। तो भक्त जो है श्राप से भी घबराते नहीं। कभी कभी हमें लोग भक्त भी पूछते हैं, अरे उसने मेरे ऊपर काला ब्लैक मार्केट क्या काला जादू किया है, उसे काला जादू किया है मुझे, मेरे ऊपर ये जादू किया है जिसके कारण मेरे खानदान में ये कष्ट आ रहा है, ये कष्ट आ रहा है, कभी कभी सुनने में आता है। तो हमें कहते हैं कि अगर आप शुद्ध भावना से जाप करोगे तो कोई आपका काला जादू सफेद जादू नहीं कर सकता, क्योंकि आप शुद्ध भावना से जाप नहीं कर रहे, जप में पूरा विश्वास नहीं, तो आप सोचते हो जप से ऊपर काला जादू की शक्ति है। जप से ऊपर किसी की शक्ति नहीं। अगर हम श्रद्धा से ध्यान पूर्वक जप माला कर रहे हैं लोग, तो कोई आप पर काला जादू या कोई जादू नहीं कर सकता, क्योंकि परम भगवान फिर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारे में ये पूरा विश्वास होना चाहिए। तो जब ये ब्राह्मणों को, जब ये द्वारपालों को इन्होंने श्राप दिया, द्वारपालों ने श्राप स्वीकार कर ली, और जब ये वार्तालाप हो रहा था कुमारस का द्वारपालों के साथ, परम भगवान ने सुन लिया, और जीवा गोस्वामी के अनुसार भगवान वहां आए देखने के लिए क्या चर्चा हो रही है। अगर मान लो बाहर कोई चिल्ला रहे हैं दो तीन व्यक्ति, तो आप भी बाहर जाके देखोगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब कुमारस ने देखा कि भगवान का कितना गहरा स्नेह है इन द्वारपालों के प्रति, कितनी मिठास प्रेम से चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ गलती कर दी है श्राप देकर, हमें श्राप वापस लेना चाहते हैं। पर भगवान ने क्या कहा, ये मेरी इच्छा थी कि तुम्हें श्राप दो। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे अपने अनेक रूपों में। तो अब इसका यह अर्थ नहीं कि आप एक दूसरे को श्राप दो कहो ये भगवान की इच्छा है, यहां फिर है। तो यहां हमें भगवान के वैकुंठ धाम के विषय में सूचना दी जा रही है इस अध्याय में। और हमें ये सूचना क्यों दी जा रही है, क्योंकि अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप ये समझ लोगे कि इस जेल खाने में रहने का कुछ भार लाभ नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास करोगे आप अपने आप को सात प्रकार के कष्टों से किसी हालत में बचा नहीं सकोगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या कहता है, निकलो ये जेल खाने से और भगवान के धाम में प्रवेश करने को का प्रयास करो। खास करके जब भगवान आपको निमंत्रण दे रहे हैं, भगवान स्वयं आते हैं आपको निमंत्रण दे रहे हैं, भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं निमंत्रण के साथ। भौतिक संसार में अगर कोई मान लो कोई बहुत धनी बन जाए तो वो आपको निमंत्रण देता है तुम भी धनी बनो, नहीं वो तो यही देखेगा आप गरीब रहो, है ना। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत सफल होता है, वो चाहता है आप भी सफल हो, नहीं वो चाहता है आप असफल हो मैं ही खाली सफल रहूं। तो पर यहां भगवान आपको निमंत्रण दे रहे, आओ मेरे धाम छोड़ो। भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं बार बार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर हम इतने ढीठ हैं, लाखों बार सुनने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठाते। इसलिए कहा गया है नस्त प्रेषु अभद्रेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती तुम श्लोके भक्ति भावती नहीं सके। क्यों? क्योंकि आप बकायदा सुनोगे रोज नियमित रूप से भागवत के संदेश को, तो फिर ये संभावना है कि ये विचार आपके मन में बैठेगा और आप दृढ़ होकर ये निर्णय करोगे कि चाहे कुछ भी हो हमने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होना। हमारा भाव ये रहना चाहिए कि जो भक्ति मार्ग जिसमें आप जुड़े हो, बिना देखे बाएं दाएं तरफ देखे आप इसी रास्ते में जुड़े रहो। तो भौतिक संसार में बाएं दाएं देखते रहते हम, क्यों? भौतिक आकर्षण रहता है। भक्ति मार्ग में जुड़े हैं पर भौतिक आकर्षण प्रयास करता है हमें विचलित करने के लिए। पर हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हम केवल सीधा ही जुड़ते रहे, सीधा ही देखें। जैसे कि क्षेत्रीय महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी से कहा था, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस कार्य को त्यागें और जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस कार्य को स्वीकार करें। तो अगर ये नियम रहेगा, ये भाव रहेगा, फिर आप बाएं दाएं देने से देखने से बच सकोगे। और इसके लिए अवश्य क्या है, श्रवणम कीर्तनम। वैकुंठ जगत में 24 घंटे हर भक्त कीर्तन करता है। आप एक घंटा कीर्तन करते हो तो सोचते भी वहां जाओ हवा खाओ। वैकुंठ जगत में सारे वासी 24 घंटे श्रवणम कीर्तनम में जुड़े हैं। वो 24 घंटे श्रवणम कीर्तनम में जुड़े हैं और कभी थकते नहीं। आप तो सोना माना करते हो और सोचते हो बहुत कमाल कर दिया। पर वैकुंठ धाम में दिन रात केवल एक ही विषय है, भगवान का गुणगान। और भगवान का गुणगान करते हैं और कभी थकते नहीं। तो उस वैकुंठ धाम में प्रवेश करने की भक्तों की इच्छा होनी चाहिए। तो आप में से किन किन की इच्छा वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए? सबकी। इस अध्याय में आप रोज सुनोगे वैकुंठ धाम के लक्षण। पर हाथ तो सबने लगभग उठा दिया, पर वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए काफी महंगी टिकट खरीदनी पड़ती है। मतलब अगर वैकुंठ धाम में प्रवेश करना है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन सब के प्रभाव से बचना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये तो असंभव है, कठिन है। कठिन है पर असंभव नहीं। अगर असंभव होता तो भगवान कभी नहीं कहते आओ मेरी शरण में। भगवान ने स्वयं कहा कठिन है पर असंभव नहीं। और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से यही मार्ग, जिसके लिए यही लक्ष्य, जिसको प्राप्त करने के लिए 1,00,000 साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, आज आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे? यह हरि नाम के माध्यम के उच्चारण से। और हरि नाम के माध्यम के विषय, हरि नाम के उच्चारण के विषय में आप ये पढ़ते हो कि अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हमें अपराधों से रहित माला का जाप करना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए, और खास करके ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक का अर्थ है जब जब करने बैठ रहे हो तो जाप को ही अपना विषय बनाओ और किसी विषय को नहीं रखो। और जितने ध्यान से अब जाप करोगे उतनी तेजी की तरह भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। तो संक्षेप में, काफी समय हो गया, तो संक्षेप में इस श्लोक में आपको वैकुंठ धाम के विषय में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक ज्ञान तो ये प्राप्त हुआ वैकुंठ धाम शाश्वत है, कभी वो नष्ट नहीं होता, और हर वैकुंठवासी भी कभी मृत्यु के सामने नहीं झुकता। पर वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए भौतिक आकर्षण को हमें त्यागना है। और कुमारा जो है भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश कर पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने भौतिक आकर्षण त्याग दिया था और इसलिए भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर पाए। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये भी कहा है कि भौतिक संसार में केवल चिंता ही चिंता है। चिंता से हम सब भरे हुए हैं। चाहे आप किसी धनी देश के राष्ट्रपति भी बन जाओ, चिंता है। क्या चिंता? कुछ दुर्घटना बीत सकती है। तो हम चिंता से भरे हुए हैं। और गोविंद दास काविराज जी क्या कहते हैं? बाजा होरे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद्रे। हे मेरे मित्र, अगर तुम चिंता से रहित होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? वहां नंदा के पुत्र के शरणगत होना चाहिए। तो चिंता से हम भरे हुए हैं क्योंकि हम कुंत जगत में निवास कर रहे हैं। पर आप चिंता से रहित हो सकते हो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। और इसका अर्थ क्या है? गहराई के साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का लाभ उठाओ, फिर आप चिंता से रहित हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, आप पताला लोक से ब्रह्म लोक तक पहुंच जाओ कि आप चिंता से रहित नहीं हो सकते। चिंता से रहित होना है तो वैकुंठ धाम में जाने का प्रयास करो। और अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान अवश्य ही आपका सहयोग करेंगे। कई बार हम सुनते हैं जब ये शिक्षा और चार नियम इत्यादि हम सोचते नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। पर भगवान क्या कहते हैं गीता में, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें अगर कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर कर देता हूं, और जो गुण है उन्हें मैं रखता हूं। तो हमारे में हजारों कमियां हैं, पर अगर आप श्रद्धा से प्रयास करो तो भगवान आपका सहयोग देंगे। कहते ना भगवान उनका सहयोग देते हैं, किनका, जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो आप अगर प्रयास करोगे कि इन अपराधों, इन अवगुण, इन दोषों से बचने का और भगवान की शिक्षा का पालन करोगे तो अवश्य ही भगवान आपका सहयोग देंगे। आप सब भक्तों से निवेदन है कि यहाँ जो भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन प्राप्त हो रहा, ये कल्पना नहीं है, ये मत सोचना ये कल्पना है। आप सुन रहे हो कि वहाँ वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति के पास हवाई जहाज है, हीरे मोतियों सोने का, तो आप कहोगे ये तो कल्पना है। आजकल क्या एक प्रोपेगंडा चल रहा है, एक प्रोपेगंडा ये चल रहा है कि वैदिक साहित्य में जो भी सूचना है वो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, का मतलब काल्पनिक है, ये वास्तविकता नहीं है। और जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने वो अपने कई बड़े जो उनके पढ़े लिखे पीएचडी थे उनको संस्कृत शिक्षा दिलवाई। फिर संस्कृत शिक्षा के प्राप्त करने के बाद इन्होंने हमारे वैदिक साहित्य का अनुवाद किया, और फिर ये अनेक लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, जिसमें ये स्थापित किया कि ये सब कल्पना है। एक प्रसिद्ध नेता हमारे देश में, उसने कुछ 6 महीने पहले हमने पढ़ा था, वो कह रहा था कृष्ण और राम हुए ही नहीं, ये तो कल्पना है, क्या प्रमाण है कि वो हुए। आज लोगों में इतनी हिम्मत है। तो लोग सोचते हैं कई बार, भौतिकवादी व्यक्ति, अगर आप उनको ये वैकुंठ धाम का वर्णन दो कि किस प्रकार वैकुंठ धाम है, हर व्यक्ति के पास हवाई जहाज है सोने का बना हुआ, और हर वहां के व्यक्ति यहाँ के लोगों से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है, तो वो क्या कहेंगे। और कभी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़ता, कोई क्लेश नहीं, तो कहेंगे दिस इज ऑल इमेजिनेशन, ये सब किसकी कल्पना है। पर ये कल्पना नहीं, और आपका अपना विश्वास इसमें बढ़ेगा। कई बार हम सुनते हैं, विश्वास रहता है, फिर माया के प्रभाव में आकर विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, शायद सच है, शायद सच नहीं, क्या प्रमाण है, किसने देखा है। पर अगर आप अपने आप को दृढ़ बनाना चाहते हो, जैसे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यत, अगर आप डिटर्मिनेशन की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन क्रिया की आवश्यकता है। रूप गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि भजन क्रिया के द्वारा ही ये दृढ़ विचार प्राप्त हो सकता है। तो आपकी अपनी श्रद्धा वैकुंठ धाम के गुणों के विषय में बढ़ेगी अगर आप ध्यानपूर्वक भक्ति की विधियों का पालन करोगे। और अगर आप खुद ढीले होगे पालन में तो आप सोचोगे कल्पना नहीं, पर सच है, झूठ भी हो सकता है। पर अगर आप दृढ़ होकर विश्वास का पालन करोगे तो आपके मन में भी ये विचार बढ़ेगा कि यह वैकुंठ धाम असली है, वास्तविकता है, और हम सब वहां प्रवेश कर सकते हैं अगर भगवान के शरणागत हो। तो आप सब ये निर्णय कर रहे हो कि भगवान के धाम में पहुंचना है, पक्का, देखेंगे समय के साथ। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न है या काफी देर हो गया। अरे एक प्रश्न, हाँ हाँ पूछे।
कृष्णा महाराज, आपने बताया कि वैकुंठ जगत में जाने के लिए हमें काम, क्रोध, मोह, इन सब से बचना पड़ेगा, तो
इनको दूर करना पड़ेगा।
हाँ, तो क्या ये हमारे मन में ये बातें आती रहती हैं एंड तक, या कोई ऐसी स्थिति पहुंचती है कि जब ही आनी बंद हो जाती हैं?
मतलब कि क्या आप ऐसी स्थिति पर पहुंच सकते हो जहाँ कि आप इन अनर्था से मुक्त हो जाओगे?
हाँ जी, ये आपके आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी और हाँ, ये आपके पास नहीं आएंगी।
बिना शंका के अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करो, शास्त्र का अध्ययन करो, तो आप उस स्थिति पर पहुंच सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने सुना होगा कि किसी क्षेत्र में आप बार बार अभ्यास करो तो आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हो, है कि नहीं. ये सोचना कि अभी हम भक्ति में जुड़े हैं, दीक्षा लिए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं तो तुरंत ही हमारे में ये सारे गुण प्राप्त हो जाने चाहिए, ये असंभव है. पर अगर प्रयास करते जाओगे तो बिना शंका के आप इन अनर्थक को दूर कर सकते हो. भगवान गारंटी देते, कोई बड़ी दुकान से आप सामान खरीदते हो और दुकान वाला कहता है अच्छा नहीं लगे तो वापस नहीं आना एक हफ्ते में, तो आपके मन में विश्वास रहता है कि नहीं. आपके हाथ में 100 रुपए का नोट है, आपको विश्वास है कि अगर ये असली नोट है तो किसी दुकान में जाकर भी आप कुछ खरीद सकते हो. तो उसी प्रकार हमारे में ये विश्वास रहना चाहिए, और ये विश्वास बढ़ता है जब आप भक्ति का पालन करते हो. भजन क्रिया, ये नहीं सोच सकते कि अभी हम 1 साल से जुड़े हैं तो हमारा विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो गया है.
महाराज, जब जप करने का हम लोग की हर वक्त होता है कि अगले दिन जप हमें करना है, जब करते हैं, व्हाई डू यू फील दैट द जपा इज अ बर्डन फॉर मी? अ पर्सन लाइक मी, आई फील दैट जपा इज अ बर्डन. आई ट्राई टू डू इट एज अ बर्डन, सो व्हाई इज इट अ केस लाइक दैट?
यू कंसीडर जपा लाइक अ बर्डन? तो इनका कहना है, इनका प्रश्न ये है कि हमें क्यों लगता है कि 16 माह जप करना एक भारी बोझा है. जैसे कि अगर आपको निमंत्रण दिया जाए समोसा कचौड़ा पकौड़ा खाने के लिए, तो आप उसे तो बोझा नहीं मानोगे. अभी इस प्रोग्राम के बाद हम लोग स्नैक बार में जा रहे हैं नए स्नैक बार का उद्घाटन करने. तो अगर आप सबको वहां समोसा कचौड़ी पकौड़ा आइसक्रीम दिया जाए तो शायद आप ऐसे कोई मानेगा ये बोझा है, आप तो खुशी से ले लोगे. तो जब आपको कहा जाए माला का जाप करो ये करो तो वह एक रूप से बोझा दिखता है. तो बोझा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ. अभी तक हमारा टेस्ट है भौतिक कार्यों के प्रति. इसके लिए जब हम जाप करने बैठते हैं मन भटकता है, भौतिक विचार उत्पन्न होते हैं, तो हमने ये टेस्ट बनाना है. यही हमारे संतों ने कहा है. रूप गोस्वामी जी तो कहते हैं हे भगवान, आपके नाम इतने मीठे हैं, आप पे इतने गुण हैं कि आपके गुणों का वर्णन करने के लिए मुझे लाखों जीव और लाखों कानों की आवश्यकता है. कितने? लाखों. अभी भगवान की कृपा से हमें तो एक ही जीव और 2 कान दिए गए हैं संभालने के लिए. अगर आपके पास लाखों जीवें होती, लाखों कान और कहा जाता सदा ये लाखों जीवों का उपयोग करो भगवान की सेवा में, तो आप कहते हैं इम्पॉसिबल. तो भगवान के नाम चीनी जैसे मीठे हैं. इस विषय का वर्णन रूप गोस्वामी जी कहते हैं, करते हैं उपदेशामृत में. कहते हैं आपके नाम चीनी जैसे मीठे हैं, पर हमारी जीभ में अविद्या की बीमारी है, और क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है आपके नामों का मीठापन हमें महसूस नहीं हो रहा, इसलिए हमको बोझा लगता है जाप करना. इसलिए क्लास को ध्यान से सुनना भी बोझा लगता है क्योंकि हमारा आकर्षण नहीं. पर रूप गोस्वामी जी इस समस्या का हल भी दे रहे हैं. भौतिक संसार में समस्या का क्या का वर्णन होता है पर हल का नहीं. पर वो हल भी उपाय भी दे रहे हैं. क्या? ध्यान पूर्वक अगर तुम नियमित रूप से बकायदा जाप करोगे तो इसका मीठापन महसूस कर पाओगे. जैसे कि आप बीमार हो, गहरी बीमारी है, पर आप दवाई लोगे तो दवाई लेने से आस्ते आस्ते बीमारी दूर हो जाएगी. ओके? तो आप शायद जानते हो कि कल रथदशमी है, और रथदशमी के साथ यहाँ एक बहुत खास उत्सव है. क्या? पुष्प अभिषेक. भगवान को तीनों ऑल्टर्स में पुष्प के वस्त्र पहनाए जाएंगे, और आप सबको क्या 500 केजी वो 500 kg फूल दिया जाएगा जब भगवान को चढ़ाने के लिए। ये पहली बार है कि ये पुष्प अभिषेक किया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा था कि बहुत मुश्किल होगा दोनों कार्यक्रम एक साथ करने के लिए, पर सूतक गोस्वामी कहता है हो जाएगा। 10:30 से 11:30 अभिषेक और 11:30 से 12:30 पुष्प अभिषेक। तो आप सब भक्तों को निमंत्रण है, और आगे आप ये सूचना अपने मित्रों को भी दीजिए, अब दूसरे भक्तों को भी दीजिए, क्योंकि ये सूचना सब तक नहीं पहुंची है। ये तो बहुत थोड़े समय पहले ये निर्णय किया था, तो आप हो सके तो आना। ठीक है, हरे कृष्ण। और अभी हम जा रहे हैं नए स्नैक बार का उद्घाटन करने। अब आ सकते हो पर शायद मुफ्त में कुछ मिले नहीं है। तो उनका शुरुआत ही नुकसान में होगी। ओके, हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।